ओम शांति। आप सबको दिव्य आलोक से संपन्न सुबह की शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारी के धार्मिक प्रभाग द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में आप सबका हृदय से स्वागत है, जिसका विषय है आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान। अति हर्ष की बात है कि स्वधर्म में स्थित धर्म की धारणा देकर अनेकों को सशक्त करने वाले धर्मात्माएं आज इस ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी महान परम आदरणीय धर्म नेताओं का तथा इस ई कॉन्फ्रेंस में जुड़ रहे सभी भाई बहनों का, प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत शुभ स्वागत है, शत स्वागत है। सर्वप्रथम आज के हमारे गणमाननीय अतिथियों का और आप सभी दर्शकों का शब्दों के द्वारा स्वागत करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय रामनाथ भाई जी हमारे साथ हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज में 4 दशकों से समर्पित रूप से अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। रामनाथ भाई जी से अनुरोध है कि अपनी शुभ भावनाओं को शब्दों का रूप देकर हमें 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा बताएं और हम सब पर स्वागत पुष्प बरसाएं।
ओम शांति। मंच पर विराजमान आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी, अभी और सभा में उपस्थित हमारी बड़ी बहनें तथा साधु संत, आध्यात्मिक गुरु सभी, आज हम और आप सभी इस सर्वधर्म सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और हर साल माउंट अबू ये ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है। बहुत सालों से हर साल सर्वधर्म सम्मेलन और संत सम्मेलन ऐसे करते आए। इस साल खास वो हो नहीं सका, फिर भी ई कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम अपना कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि श्रावण मास है, साधु संतों का, आध्यात्मिक गुरुओं का सभी दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। खास आज सारे विश्व के अंदर ऐसी एक परिस्थिति आई है, ऐसी परिस्थिति के अंदर गवर्नमेंट अनाज दे रही है, धन भी दे रही है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी कर रही है, दवाई भी दे रही है, डॉक्टर्स वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं जो मरीज बीमार व्यक्तियों की देखभाल में है। ऐसे सुरक्षा कर्मचारी भी हर प्रकार की सुरक्षा के लिए, हर प्रकार की अपनी तन मन समय श्वास देकर विश्व की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तब एक प्रश्न आया, हम और आप सभी साधु संत, आध्यात्मिक गुरु, इस बहुत बड़ी विपदा है, समस्या है, इसका हल एक ही कर सकता है, जो भाग्य विधाता है, सृष्टि का रचयिता है, उसने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की थी। लेकिन आज क्या हो गया? तो ऐसे जो सर्वशक्तिवान सत्यम शिवम सुंदरम कहा, उनके राइट हैंड कौन है सृष्टि पर, जो अपना त्याग तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति को अपने अंदर संजोए हुए है। तब का भगवान के राइट हैंड, भगवान तक पहुंचने के लिए सही मार्गदर्शक है। इसलिए सारा विश्व साधु संतों का खास इस पुरुषोत्तम मास का है, श्रावण मास के अंदर इसी समय पर, ये योग्य मास है, पुण्य जमा करने का समय है, तो साधु संतों का आशीर्वाद चाहते हैं, दया चाहते हैं, कुछ प्राप्ति चाहते हैं। इन्होंने जो तपस्या किया है, पवित्र जीवन जीकर अपने साधना की है, उससे हमें कुछ फायदा होगा, कुछ मदद मिलेगी। सभी दे रहे हैं, भगवान तो निराकार है, मनुष्य यात्राएं कर रहे हैं, पूजा पाठ मंदिर में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं, लेकिन इस ई कॉन्फ्रेंस के द्वारा साइंस ने एक साधन दिया, इसके द्वारा तो हम उनका दर्शन, उनका अनमोल वचन, साधु आशीर्वाद और उनके त्याग तपस्या पवित्रता के पवित्र वाइब्रेशन और वो दिव्य दृष्टि के द्वारा कुछ प्राप्ति चाहते हैं। अपने आप को उनका दर्शन कर, अपने दुख दर्द समस्या से अपने आप को हल्के करना चाहते हैं, इसी लक्ष्य को लेकर आज ये संत सम्मेलन, सभी साधु संत आध्यात्मिक गुरुओं का एक मंच पर, एक ही समय पर, हरेक का अनमोल वचन सुनने के लिए सभी सारे विश्व के भगवान के बच्चे चातुर्क होके देख रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सभी का तहे दिल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओर से बड़ी दादियां हैं, भाई हैं, बहने हैं, सभी के ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और यही एक आपके साथ मैं भी यही लक्ष्य रखता हूं और आज आप सबके सामने यही प्रतिज्ञा भी करना चाहता हूं, हम भी कुछ दान करें। सबकी इच्छा है, नजर है, कुछ मिलेगा तो इनसे ही कुछ राहत मिलेगी। यही तारने वाले हैं, यही देवताएं हैं, कुछ देने वाले हैं, इनके पास ही वो पवित्रता का, साधना का बल है, यही वो तपस्वी है, त्यागी है। इन्होंने त्याग तपस्या द्वारा पवित्रता के बल से भगवान से जो प्राप्त किया है, उनसे अंजलि हमको भी मिलेंगी। इस आशा रख के नजर खोलकर देख रहे हैं चात्रक की तरह, तो हम क्या दे सकते हैं। मुझे लगा मैं भी अपने तरफ से ये वादा करता हूं, कम से कम एक महीना, जैसे श्रावण मास में व्रत रखते हैं, इस श्रावण मास में कम से कम एक महीना मैं क्रोध मुक्त रहूंगा, क्योंकि सारी बीमारी, सारे दुखों का कारण देखा एक क्रोध है। स्वयं की बीमारी के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, एसिडिटी, इस सब का कारण लड़ाई झगड़ा, जिस जो देखते हमको उनका भी हमारे पर कुछ विश्वास होता है, वो भी टूट जाता है एक दिन। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगा हम भी कुछ आज क्या दे सकते हैं, हमारी शुभ भावना शुभकामना साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी करो, कम से कम एक महीना मैं क्रोध मुक्त रहूं। ये क्रोध ही सारी बीमारी दुखों का कारण, अगर मैं करूं तो मुझे देखकर अनेक अन्य आत्माओं को भी यही प्रेरणा आएंगी, यही हम दे सकते हैं। अगर मैं करूं नहीं करूं तो औरों को कहो आप करो, ये संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, अगर आप करते हो तो आपके अंदर वो बल है। ऐसे ही कम से कम एक महीना मन और तन, वाणी और कर्म से पवित्रता चाहिए, क्योंकि अभी हमारे सामने राखी बंधन आ रहा है। हर एक गुरुजनों के पास, ब्राह्मणों के पास, साधु संतों के पास जाकर राखी बनते हैं। ये पवित्रता का पर्व है कि हम भाई बहन एक भगवान के बच्चे हैं। इसलिए भारत में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम्, एक भगवान, हम एक परिवार है, भगवान के बच्चे हैं। त्वमेव माता श पिता त्वमेव कहते हैं, तो आपस में कौन ये स्नेह ये संबंध कम से कम एक महीना ये व्रत, क्यों एक साधे सब साधे, पहले थोड़ा सा एकदम कहो इतने एक साल करो तो लगता है कैसे होगा, क्योंकि बूंद बूंद मिलकर एक एक कदम कदम मिलकर कितनी बड़ी राह हो, धीरे धीरे हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गड़बड़ी करने से थक जाएंगे धीरे धीरे, तो इसलिए का कम से कम एक महीना। ऐसे भी दुनिया में श्रावण सोमवार, श्रावण शनिवार, श्रावण मंगलवार, हर एक माताएं भाई बहने गृहस्थ में सभी भारत में रखती है, उसके साथ और थोड़ा सा कदम ये स्थूल हम करते हैं। मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, करना चाहिए, गुरुओं की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जरूर लेना चाहिए। उसके साथ ये अंदर एक व्रत भी रखे तो हमारी जो वृत्ति है, भारत आदि सनातन देवी देवता धर्म का है, इस सनातन संस्कृति इतनी स्वच्छ है, निर्मल है, हर एक को देखते ही ये देवी देवताओं के वंशावली है। देवी देवता हमारे पूर्वज है, हम उस कुल के हैं। इसलिए हर एक के घर में भी मंदिर भी न हो आज की मॉडर्न दुनिया में, लेकिन चित्र जरूर होगा, कैलेंडर फोटो होगा ही। कितना भी कोई कहे मैं इस धर्म को नहीं मानता हूं, साइंस को मान, तो भी उनके मां बाप ने ऐसी शिक्षा दी है, घर का ओपनिंग करेंगे तो स्वस्तिक का चिन्ह लगाएंगे, गणपति का महा अंगने हनुमान जी का चित्र जरूर रखेंगे, श्री राम का श्री कृष्ण का जरूर, भोलेनाथ शंकर का चित्र जरूर, किसी न किसी घर में किसी कोने में हो जो नास्तिक कहते हैं नहीं हम मानते नहीं है, तो भी होगा अवश्य, ऐसा मेरा विश्वास है और मैंने देखा है। इसलिए आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और आप सभी अपना ये हर स्पीच में आशीर्वाद और वचन के साथ एक प्रतिज्ञा भी जरूर करें, तो लोगों को लगे कि हम सिर्फ आशीर्वाद नहीं करते हैं, कुछ दान भी करते हैं। क्योंकि हरेक को मंदिर में भी जाते हैं, भगवान से कुछ चाहते हैं। तो हमारे असाधु संतों से भी हरेक की कोई इच्छा है, इनसे कुछ हमें आशीर्वाद मिले। इन्होंने जो मेहनत करके तपस्या किया, उनका उसका भी कुछ हमें अंजलि मिले। ऐसे मेरे सबके प्रति शुभ आशा शुभ कामना रखता हूं और सबको दिल से बार बार धन्यवाद और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत सुंदर, अति श्रेष्ठ भावनाओं से, आदर प्रेम से सबका स्वागत करने वाले आदरणीय रामनाथ भाई का भी स्वागत है। आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान कैसे हो सकता है, इस विषय को स्पष्टीकरण करने के लिए हमारे साथ हैं रिलीजियस विंग की चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी। आपने 5 दशकों से ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया है। आपने प्रयाग में 3 महाकुंभ और 5 अर्धकुंभ में ब्रह्म कुमारी की ओर से भाग लेकर स्वधर्म में स्थित होने की प्रेरणा दी। आप गहरे आध्यात्मिक वक्ता और बहुत अच्छी मंच संचालिका हैं। आप आध्यात्मिक काव्य और साहित्य लेखन भी करती हैं। आपको हिंदी भाषा पीठ की ओर से सारस्वत सम्मान और साहित्यिक संस्था द्वारा पाठ्य सम्मान प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं इस ई कॉन्फ्रेंस की थीम पर दीदी जी के सशक्त विचारों को।
आज बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में हमारे परम पूजनीय संत पधारे और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय साथ साथ राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में धार्मिक प्रभाग की ओर से एक सम्मेलन जो हम प्रतिवर्ष करते हैं अरावली की इन पर्वत श्रृंखलाओं में पूजनीय तपस्वी संतों का आगमन और वैचारिक आड़ोलन विडोलन जिसके माध्यम से एक नई चीज निकलकर समाज के लिए आती है और समाज का हित करती है। आप सबका कोटि कोटि स्वागत है आज के मंच पर। परम श्रद्धेय परम पूजनीय तपस्विनी परम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी, जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वर्तमान समय से मुख्य प्रशासिका हैं और हमारे राजयोगी तपस्वी भ्राता निर्भय जी, सभा में उपस्थित वर्तमान समय जो संत हैं माननीय आदरणीय डॉक्टर कौशल किशोर जी जो हमारे मध्य भरतपुर से पधार रहे हैं, स्वामी शिव स्वरूपानंद जी जो हमारे बीच जोधपुर से तशरीफ लाए हैं और साथ ही साथ स्वामी आध्यात्मानंद जी जो हमारे मध्य में अहमदाबाद गुजरात से हैं, अखिल भारतीय स्तर के हमारे ये संत स्वामी जन्मेजय शरण जी अयोध्या, हमारे राम मंदिर न्यास के सदस्य हैं। इन संतों को अपने मध्य पाकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और आज की इस सभा में जो श्रोताजन हैं उन सबका भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वर्तमान परिस्थितियों में ये ई कॉन्फ्रेंस हो रही है, निस्संदेह कि हम सब साकार में नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने हमारा आपका उपस्थित होना सुगम करा दिया है। मैं सभी पूजनीय संतों का, आदरणीय दादी जी का, आदरणीय भ्राता जी का, आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, आत्मीय भ्राता रामनाथ जी जो हमारे माउंट आबू के मुख्यालय संयोजक हैं, सभी का कोटि कोटि अभिनंदन और वंदन करते हुए अपने विषय पर आ रही हूँ कि आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान ये कैसे संभव है, क्योंकि वर्तमान समय जिस तरह की गतिविधियां संसार में चल रही हैं, चारों ओर हम देख रहे हैं समस्याएं अनेक हैं और समाधानकर्ता परमात्मा एक है। जिधर भी नजर जाती है, कहीं आर्थिक है, कहीं सामाजिक है, कहीं राजनैतिक है, तो कहीं पर पर्यावरण से संबंधित प्राकृतिक है, बहुत सारी समस्याएं चारों ओर सर उठाए खड़ी हुई हैं और इन समस्याओं को देखते हुए विषय रखा गया है आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक कल्याण। तो इस विश्व का कल्याण करने के लिए अगर हम देखेंगे तो या तो इस संसार में वो परमपिता परमात्मा नजर आता है जो इसका कल्याण कर सकता है, मनुष्य की तो हम चर्चा नहीं कर सकते, और अगर थोड़ी बहुत राह कोई दिखा सकता है तो हमारे ये रहनुमा, हमारे ये संत जो यहाँ आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी उपस्थित हुए हैं, इनकी गरिमा में वो शक्ति है, इनके अंदर वो शक्ति है कि ये समाज को दिशा दे सकते हैं। आज वर्तमान में हमारी जहां तक भी दृष्टि जाती है, हमने जहां जहां देखा, जो कुछ भी देखा, विकास के नाम पर हर कदम चारों ओर अपनी चकाचौंध मचाए हुए है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने बहुत सारा आर्थिक विकास किया, सामाजिक विकास किया, यांत्रिक विकास किया, लेकिन सब कुछ भौतिकवाद के दायरे में सिमटा हुआ नजर आता है। जहां तक भी आपकी दृष्टि जाएगी, आज यंत्रों से जो उपलब्धि हुई है वो सारी उपलब्धि क्या है, आप देखिए सारी उपलब्धियां यांत्रिक हैं। हम जो कुछ उत्पादन कर रहे हैं बहुतायात में उस उत्पादन को उपभोग के लिए समाज को देने के लिए यही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिससे हम रोज रोज समाज के आगे उन सब चीजों को प्रस्तुत करते हैं। आवश्यकता है नहीं, लेकिन हमारी आवश्यकता बन गई उनका उपयोग करना। आज इतने यांत्रिक हो गए हैं कि हम दो कदम पैदल नहीं चलना चाहते। अगर घरों में माता पिता ने या किसी ने सब्जी लाने की बात किसी युवा बच्चे को कह दी तो वो कहता है स्कूटर की चाबी देना मम्मी। ये क्या है, वो दो कदम बिना स्कूटर के नहीं जा सकता। तो हमारी जिंदगी लैपटॉप में सिमट गई, हमारी जिंदगी इन यंत्रों में सिमट गई। आज मनुष्य स्वयं यांत्रिक हो गया है, पुतला हो गया है, और इस यंत्रों के पुतले को मंत्र भूल गए। यही कारण है कि उसे त्राही त्राही करना पड़ता है। यंत्रों भरी जिंदगी हमारे उस प्राचीन मंत्रों की, भारतीय सनातन संविधान, भारतीय सनातन संस्कृति और जो हमारी पूंजी थी उसको प्राय भूल गई है। तो भौतिकता की ओर उस चकाचौंध में जहां हम दौड़ रहे हैं वहां अल्पकालिक सुख तो मिल सकता है, कोई दो राय नहीं, किंतु अगर हम ये कहें ये निरंतर मिल सकता है, अनश्वर मिल सकता है, आनंद की उपलब्धि हो सकती है, ये तो संभव नहीं है। इस नश्वर शरीर के लिए नश्वर सामग्रियों का संग्रह करते चले जा रहे हैं। उस अनश्वर की ओर न कोई देखता है, न कोई सुनता है, न कोई चलना चाहता है। इसीलिए कहा जाता है, मुझे कहना पड़ रहा है, इसीलिए कहा जाता है, अति इंद्रिय विषय वेदा प्रमाणम। जो कुछ इंद्रियों के अधीन है, जो कुछ इंद्रियों के द्वारा भोगा जा सकता है, वो सब कुछ हमने संग्रह कर लिया है। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं अध्यात्म की, तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, जिसके प्रति मन विषयासक्त नहीं है, मन जिसको चाहता तो है लेकिन स्वयं नहीं समझ पाता कि कौन सी अवस्था मन चाहता है, तो आज आवश्यकता है। हमने जो कुछ संग्रह किया है, उस संग्रह करने में हमने बहुत कुछ विनाश किया, प्रकृति का दोहन किया, हमने भूमि को खोद डाला, पेड़ों को उखाड़ डाला, जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही थी उसको चिमनियों के धुएं से प्रदूषित कर डाला। और आज जब ये वायरस, सब जानते हैं कि कोरोना नाम के वायरस ने, 19 कोविड ने जीवन को किस तरह के भयावह संकट में डाल दिया। आज मानव की सारी आजादी चार दीवारों के अंदर बंद होकर रह गई है। मनुष्य चाहता है हम बाहर निकलें, पंख फैलाएं, इस समाज में पुनः उड़ें, लेकिन घर में माँ बाप कहते हैं कहाँ जा रहे हो, घर बैठो, बाहर कोरोना है। कहीं निकलना चाहते हैं बोले लॉकडाउन है, बोले जाने के पहले आप संक्रमित नहीं है, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सारी गतिविधियां एकाएक रुक गई हैं और ऐसी भयावह परिस्थिति में वास्तव में अगर आप देखिए तो किम करोमि को गच्छामि को मे रक्षाम करिष्यति, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरी रक्षा करे। मानव मन बहुत सारी हलचल में पड़ा हुआ है। और तो और आपको एक बात और बता दें कि निरंतर गतिशील रहने वाला चक्र यदि रुक जाए तो कैसी स्थिति होती है। आज मानव मन की स्थिति इसीलिए त्रासदामय हो गई है कि निरंतर गतिशील रहने वाला आज एकाएक थम गया है। अब क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें। और इस किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में यदि कोई राह दिखा सकता है तो हमारे ये संत, हमारा ये पूजनीय समाज यदि पुनः अपनी प्राचीन स्थिति को पाना चाहता है तो उसको पाने के लिए आध्यात्म की शरण में आना ही पड़ेगा। क्योंकि धर्म की आवश्यकता ही है, परमात्मा ने हमें समय, असीम शक्तियां असीम दी हैं और समय सीमित दिया है। ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रत्येक मनुष्य को शक्तियां बहुत हैं, समय सीमित है। वो अपनी जीवन की चंद शक्तियों को, अगर कहें बाह्य शक्तियों को, इस स्थूल साधनों में लगा के यूज कर लेता है और उतने में ही बहुत प्रसन्न हो पाता है। लेकिन नहीं, इसके आगे भी उसे देखना पड़ेगा, इसके अंदर भी उसे देखना पड़ेगा। और सच पूछिए तो जिस चीजों को हम बाहर की ओर टाल देते हैं, क्यों भला अंदर क्यों नहीं देखना चाहते। जब आध्यात्म की हम चर्चा करते हैं तो आज वर्तमान समय में हर राष्ट्र ने न जाने कितने मंत्रालय बनाए हैं, लेकिन कोई मंत्रालय आध्यात्म का भी बनाया, कोई आध्यात्मिक मंत्री भी बनाया, धर्म के नाम पर जो हमारी धार्मिक धरोहर है उनको सुरक्षित करने के लिए कहीं कहीं धर्म के मंत्रालय बने हुए हैं, कहीं कहीं धर्म के मंत्री भी बने हुए हैं। लेकिन धर्म जिसको कहते हैं धृढ़धारयेति इति धर्मः, जो जीवन में धारणाओं में निहित है, वास्तव में वही धर्म है। और धारणाओं में क्या निहित है क्या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा। आपको एक बात कहें, आज मान लीजिए यूं ही कहीं आग लग जाती है, लोग भागने लगते हैं, भागो भागो भागो। तो मनुष्य अपने घर से, बंगले से निकलकर या सभा समाज जहां आग लगी होती है वहां से उठ के बाहर भागता है। कुर्सियां नहीं भागती, मेजे नहीं भागती, सोफे नहीं भागते। आज इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में ये शरीर भी तो एक उपभोग की वस्तु ही है, और है क्या ये बताइए। और इस शरीर को जब भागो भागो सुनता है, ये भी भागता है। कौन? ये नहीं, इसके अंदर रहने वाली चेतना। जैसे मकान में रहने वाले व्यक्ति भागते हैं, सोफा वहीं छोड़ देते हैं, सामग्री वहीं छोड़ देते हैं, अलमारियां वहीं छोड़ देते हैं, केवल खुद भागते हैं। इसी तरह ये मनुष्य भी जब परेशान होता है तो इसके अंदर रहने वाली चेतना शक्ति भागती है, और ये दांत, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये वहीं रह जाता है। तो इसके अंदर की जो चेतना है, आखिर कभी तो हमें भी उसके लिए चेतना पड़ेगा। अगर हम नहीं चेतेंगे तो अध्यात्म का मतलब ही क्या है? अध्ययन प्लस आत्म, क्षमा कीजिएगा, कर्मकांड का मतलब अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य है अपने उस पुंज की ओर देखना। एक और बात कहना चाहूंगी निवेदन के साथ कि आज अगर आटे को घोल के और कुछ बना लिया जाए, कोई मिष्ठान, कोई मोदक, कोई और चीज, थोड़ी चीनी, थोड़ा घी डाला, हमने बना लिया। अब बनने के बाद उस पर लिख दिया जाता है बिफोर दिस एंड दैट। मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, इसके पहले 6 महीने तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर 6 महीने गुजर जाएंगे तो उसमें उपयोग युक्त स्वाद नहीं रहेगा। अरे वही आटा 6 महीने क्या 12 महीने भी रखा रहता है? वही चीनी 12 महीने भी होती है, वही घी बरसों रखा रहता है। लेकिन जब संयुक्त कर दिया जाता है तो उसकी अवधि निश्चित हो जाती है। इस शरीर की भी अवधि निश्चित हो जाती है। आप इसको कहीं और मिसयूज नहीं करेंगे, आप इसको इन चीजों से बचाएंगे, अधिक धूप से बचाएंगे, अधिक बारिश से बचाएंगे, करंट लगने से बचाएंगे। जैसे चीजों पे लिखा होता है, मनुष्य की जब मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी तो इसका भी तो कोई बुकलेट आया होगा, इसको हम कैसे ऑपरेट करें, हमने उसको क्यों छोड़ दिया। अगर हम गीता को देखते हैं तो आप पाइएगा कि गीता में एक बहुत सुंदर बात लिखी गई है, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगर्जरा। और इसका भाव है, कर्म करने वाला पहले अपने कृतित्व अभिमान का त्याग कर दे। आज जरा सा हम कुछ करते हैं और मगरूर हो जाते हैं। नंबर 2, भोक्तृत्व अभिमान करने के बाद ये फल मिलेगा, और इसका श्रेय प्रेम। हम जब कर्म करते हैं तो तत्काल उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, हमने ये किया है और करने वाली मैं आत्मा, कराने वाले ये मेरे हाथ, जो मुझसे वो कर्म करवा रहे हैं, मैं स्वयं तो नहीं प्रसन्न। लेकिन नहीं, जब मुझसे समाज आके कहता है अरे बहन आपने तो बहुत अच्छा बोला, हाँ हम गदगद हो गए उसकी वाणी सुनकर, अरे जब हम बोल रहे थे उस जगत नियंता से प्रेरित महावाक्य, तो हम तत्काल क्यों नहीं प्रसन्न हुए। तो कर्तव्य जब हम करते हैं तो कृतित्व तो अभिमान से मुक्त कराने वाला कोई और है, करावनहार कोई और है, हम करनहार हैं। अध्यात्म हमको यही तो सिखाता है। इसके अलावा भोक्तृत्व तो अभिमान, जो हम कर्म करने के बाद उस अभिमान से मैंने किया है, इसका श्रेय और प्रेम मुझे मिलना चाहिए, इस अभिमान से भी परे हो जाएं। और तीसरी चीज है, जब हम कर्म करते समय तदीय वस्तु गोविंदे तमेव समर्पित, जब ईश्वर को अर्पित कर देते हैं उसका एक अलग आनंद है। अगर कोई महिमा के पुष्प चढ़ाता है तो भी कुछ नहीं होता, और अगर कोई ग्लानि करता है तो भी कुछ नहीं होता। तो आध्यात्म जीवन में इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को समझें, हम अपने कर्म करने की विधा को समझें, हम उस करण करावन हार को समझें, तो दुनिया में जीने वाली तमाम संस्कृतियां, तमाम सभ्यताएं एक मंच पर आकर अपने निज आत्मिक स्वरूप को सामने रखते हुए एक पिता की संतान होने के नाते एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। संपूर्ण समाज के और विश्व के कल्याण हित कुछ कर सकने में समर्थ हो सकते हैं, और इसीलिए हमने अपने पूजनीय संतों का यहाँ आह्वान किया कि वो वर्तमान समय डूबती उतराती मानसिकता, डूबता उतराता मानव मन का त्रास जिसके कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, उन्हें कुछ बता सकता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग की विधा और व्यवहारिक विधा कि जीवन के अंदर उस चेतना को पहचान कर परम चैतन्य सत्ता से संबंध जोड़कर हम किस प्रकार से अपने को वर्तमान से ऊपर कर सकते हैं। निर्ममो भूत्वा माने इस भूत के ममत्व से न्यारे होकर जो शाश्वत सत्य है चेतना, उस बिंदु पर टिक सकते हैं। निराशी भूत्वा क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनिया नश्वर है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, किस लिए व्याकुल है। विगत जो रहा ऐसे हर कंपन से मुक्त हो जाए, आप देखिए आपको कुछ नहीं सताएगा। आज गांव में न जाने कितनी जनता निवास कर रही है और हंसती है, कैसा कोरोना, उन्हें यही पता नहीं है कोरोना है क्या। प्रकृति की खुली छांव में पेड़ के नीचे नीम के सोने वाले, कुएं से जल निकाल कर पीने वाले, कोई फिल्टर नहीं है वहाँ। सोचिए आप, आज कोरोना त्रस्त हम हैं वो नहीं। तो अध्यात्म के प्रेमी आध्यात्मिक पुरुष वो भी कोई कोरोना से युक्त नहीं, क्योंकि उनके जीवन में संयम नियम है, जगत नियंता की प्रेरणाएं हैं, साधना है, उन्होंने इंद्रियों को साध लिया है। तो आज उनका योगदान समाज के लिए महती आवश्यक है। वो अपनी साधना की झोली से कुछ रत्न समाज को दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं और इसकी गिरती हुई मानसिक दशा को सुधार सकते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगी, इसी के साथ वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आदरणीय मनोरमा दीदी का। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने आध्यात्मिकता का महत्व बताया। जब भी कोई कार्यक्रम स्व के मूल स्वरूप में स्थित किसी महान व्यक्तित्व द्वारा आशीर्वाद पाता है तो वो कार्यक्रम प्रकाशमय हो जाता है। मैं जिस महान आत्मा की बात कर रही हूँ वो है हम सबके प्रिय आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी। हृदय सर्व मानव मात्र के लिए स्नेह से भरा है। आपकी अलौकिक प्रसन्नता, आपके सकारात्मक विचार और कल्याणकारी भावनाएं मानव मन में शुभ आशा का संचार करती हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल और गवर्निंग मेंबर हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जानके फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पब्लिश होने वाली इंग्लिश मंथली मैगजीन द वर्ल्ड रिन्यूअल के आप चीफ एडिटर हैं। आपसे नम्र अनुरोध है कि अपने प्रेरणा स्रोत शब्दों से उमंग उत्साह का संचार करें।
ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा के प्रिय वत्सों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज आप सब भाई बहनों से रिलीजियस विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज की ई कॉन्फ्रेंस जो के अवेकनिंग टीवी चैनल पर चलने वाली है, इसमें पार्टिसिपेशन जिनकी भी है, चाहे वक्ता के रूप में है चाहे श्रोता के रूप में है, और उसमें भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, खासकर हमारे रिलीजियस विंग के जो चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन सब को मैं पहले से बधाई भी देता हूं और मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस अति 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 सुंदर हो, कामयाब हो और इससे जन जन को बहुत बहुत लाभ मिले, क्योंकि ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें के हम श्रोता स्पीकर्स को देख नहीं सकते हैं लेकिन टीवी के द्वारा देख सकते हैं। हाँ, ये ठीक है कि स्पीकर श्रोताओं को नहीं देख सकते हैं, नहीं तो कहा जाता है जब कोई गीत गाता है या डांस करता है तो श्रोताएं जो हैं जब ताली बजाते हैं तो उनकी ताली के कारण, वाह वाह के कारण गीत गाने वाले का, डांस करने वाले का मन बड़ा खुश होता है। मुझे तो वो दिन याद आता है, एक महात्मा जी हमारे पास माउंट आबू में हमारे स्पिरिचुअल म्यूजियम के कार्यक्रम में आए थे और उनको 15 मिनट बोलने के लिए कहा गया था। आए थे वो हरिद्वार से और हमारे जो स्टेज सेक्रेटरी वो वकील थे, तो 15 मिनट जब पूरे हुए तो उनको चिट्ठी लिख करके भेज दी। संत हंसने लगे कि ये क्या बात है, अभी तो हमारा गला ही गर्म नहीं हुआ है, कम से कम एक घंटा तो हमको चाहिए। एक घंटा संत जी इतना लाभ जनता को देना चाहते हैं। तो ऐसी जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, जिसका नाम ही देखो आपकी कॉन्फ्रेंस का है, आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान, छोटी बात नहीं है ये, आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान, सारे विश्व का उत्थान, जबकि चारों तरफ देखने में क्या आ रहा है, विश्व का बेड़ा जैसे डूब रहा हो ऐसा नजर आ रहा है। तो ऐसे टाइम पर ये विषय बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जिसने भी ये सोचा है, जिसने भी ये आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान के बारे में सोचा है, वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, बुद्धिमान हैं और जिगरी आध्यात्मिक हैं, क्योंकि ज्ञान का या धर्म का सार ही है कि आध्यात्मिक शक्ति हमारी बढ़नी चाहिए। अगर आध्यात्मिक शक्ति है तो जो दूसरी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उन पर हम विजयी हो सकते हैं। आज अगर सारे संसार को समीप लाने वाली कोई चीज है तो वो आध्यात्मिक शक्ति है। और आप सबको ये जान करके बड़ा हर्ष होगा कि आज से 84 वर्ष पूर्व परमपिता परमात्मा स्वयं निराकार शिव परमात्मा, उन्होंने अपने वायदे के अनुसार इस धरा पर अवतरित होने का संकल्प लिया और प्रजापिता ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ईश्वरी ज्ञान और सहजराज योग की शिक्षा देनी शुरू की। 84 साल आप सोचिए, लगातार कोई शिक्षा देता रहे, ज्ञान देता रहे, ईश्वरी ज्ञान की धारणा के लिए मेडिटेशन का रूप क्या होना चाहिए वो सिखाते रहे, जिसको सहज राज योग कहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आप सोचिए 84 वर्षों की उस पिता परमात्मा की आशीर्वाद डायरेक्ट हम सब मनुष्यात्माओं को जो मिल रही है, ये बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली बात है, खुश करने वाली बात है। और इसके फल स्वरूप देखा गया है कि परमात्मा पिता ने उन आत्माओं को इतना सशक्त बनाया है जिनको दुनिया के अंदर कोई इतना समझ नहीं पाया। सभी जानते हैं कि माताओं और बहनों को अधिकतर ये मान करके चलते थे कि ये तो घर संभालने वाले हैं, बच्चों की संभाल करने वाले हैं, भोजन प्रसाद बनाने वाले हैं, ये ज्ञान ध्यान की क्या बात करेंगे। लेकिन आज सारे संसार के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की कम से कम भी 40,000 बहनें और 10,000 ब्रह्मा कुमार भाई 140 देशों के 8-10,000 सेंटर्स पर सेवा करके जन जन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि हम सब सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के वारस हैं। हम भीख नहीं मांगने वाले उनसे, हम उनके वारस हैं। यह हमारा हक है कि हम फिर से सर्वशक्तिवान की शक्ति से अपने आप को सशक्त बनाएं और ईश्वरी ज्ञान की शक्ति से अपना मन इतना पावन बनाएं और सहज राज योग की शक्ति से सारी दुनिया के अंदर शांति लाने का कार्य करें। जो धार्मिक पुरुषों का काम है, बहनों का काम है, भाइयों का काम है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वर्तमान समय अपने मन को दिव्य बनाना जरूरी है ताकि आप देख सकें कि परमात्मा का कार्य कैसे चल रहा है। ये बहनें ऑर्डिनरी बहनें नहीं हैं, ये देवियां हैं। इन देवियों के द्वारा इस संसार का कितना कल्याण होता है वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। आज सारे संसार में कोरोना वायरस ने सबको भयभीत किया हुआ है और आज हमारी ये ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लाखों परिवार सबकी सेवा में हाजिर है, सबको सशक्त बना रहे हैं, सबका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं कि ये इससे भयभीत ना हो, बल्कि अपने जीवन में जो मुख्य बातें हैं पवित्रता को धारण करें, शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें, खान पान अपना शुद्ध होना चाहिए, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बन जाएं और उसके अंदर जो बहुत आवश्यक बात है कि अपना हाथ शरीर मुंह अच्छी तरह से धुलाई हो, गर्म पानी से गार्गल्स हो, और फिर इसके साथ में जो भी आवश्यकता है, बड़ी सिंपल सी बातें। लोगों को वैसे भी ऐसी चाय अच्छी लगती है जिसमें थोड़ी अदरक हो, थोड़ी तुलसी हो, उसका सेवन करें तो बहुत अच्छी तरह से ये कोरोना वायरस वगैरह जो है इसका असर, इसके असर से बच सकते हैं, इसका कोई असर नहीं होता है। तो जो डरेगा सो मरेगा, सीधी बात है। और जो हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं, संतों जैसे तो बहादुर कोई होते ही नहीं है, उनको किसी बात का डर ही नहीं है, वो पहले से ही मान के चलते हैं, भगवान कपड़ा ऐसा पहनते हैं जैसे उन्होंने अपने आप को अग्नि में पहले से जला दिया, और ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई वो सफेद कपड़ा पहनते हैं जो अंत समय सभी को पहना करके शमशान में ले जाना होता है। तो इसलिए डर किस बात का? तो ये हमें आध्यात्मिक शक्ति, इसके द्वारा सारे विश्व का उत्थान करना, ये तो परम पिता परमात्मा जो सारे विश्व का पिता है उसका ही ये संकल्प है कि मेरे बच्चे इतने सशक्त बन जाएं कि सारे विश्व को इतना ऊंचाई में ले जाएं, विश्व का उत्थान करें। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी आध्यात्मिक रिलीजियस विंग इतना बड़ा कार्य कर रही है। तो रामनाथ भाई के साथ में बाकी भी भाई बहनों को, सभी को बहुत बहुत दिल से मुबारक है, और बड़ी समय के अनुसार बहुत सुंदर टॉपिक लेकर के आपने ये विषय चुना है, आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान। ये छोटी बात नहीं है, और ये प्रैक्टिकल में हो भी रहा है, इसको और भी स्पीड अप करके पूरा करना है, क्योंकि समय थोड़ा है, समय की बहुत हमें कदर होनी चाहिए। ओम शांति।
शत शत धन्यवाद निर्वैर भाई साहब का। आप हम सभी को सशक्त बनाने वाले प्रेरणा स्रोत हैं। अब हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि इस ई कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन में हमें आशीष देने के लिए श्रद्धेय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी हमारे साथ हैं। हमारा सौभाग्य है कि यह रिलीजियस ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन विश्वव्यापी, विश्व वंदनीय, विश्व विभूति तपस्विनी दादी जी कर रही हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ हैं। सारे जहान को परमात्म ज्ञान से रोशन करने वाली विश्व प्रिय दादी जी, दिव्य अनुभूतियों से संपन्न है आप। उज्जवल व्यक्तित्व, दिव्यता की झलक, अलौकिक आभा प्रसारित करती हुई परम आदरणीय दादी जी।
ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा के प्रिय संतान, मेरे प्यारे संत महात्माएं का इस धार्मिक सम्मेलन आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। सारे विश्व की नजर आप सभी त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि आदि के ऊपर लगी हुई है, तो बोलो आप सभी क्या दान करेंगे? बोलो मेरे मीठे पवित्र योगी कुमार भाइयों, कुछ तो दान देना पड़ेगा। श्रावण मास में सभी दान करते हैं ना, हमें भी कुछ दान करना चाहिए। आओ हम सब मिलकर एक महीने के लिए क्रोध मुक्त रहेंगे, मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे। यही हम सब के लिए बड़े से बड़े पुण्य का दान है। यही दुखी भय, यही दुख भय भीत मनुष्य आत्माओं को प्रकृति की परिवर्तन करने का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी महात्माओं के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। सभी साधु संत महात्मा मंडलेश्वर भगवान की संतान है। सारे विश्व का कल्याण एक परमात्मा ही कर सकता है। उसके लिए वह स्वयं ब्रह्मा के तन में आकर के आध्यात्मिक ज्ञान दे रही है। जिस ज्ञान के बल से ही इस विश्व की उन्नति हो सकती है। हम सभी मिलकर के सारे विश्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर सर्वप्रति शांति योग दान शांति का योगदान भी अवश्य करेंगे। साथ ही साथ परमात्मा के विश्व नव निर्माण कार्य में पूर्ण सहयोगी बनेंगे। सभी मेरे भाइयों को इस श्रावण मास के राखी पावन महापर्व की बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।
दादी जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आशीर्वचनों ने हमें धन्य कर दिया। आध्यात्मिकता में शक्ति है और आध्यात्मिक शक्ति जोड़ने का काम करती है। ऐसी ही सुंदर भावनाओं से भरा एक गीत प्रस्तुत करने आ रही है हमारी स्नेही बहन डॉक्टर बी के दामिनी। गीत है सब में हो सहयोग भावना।
ओम शांति। कहते हैं तन और मन के तंदुरुस्ती के लिए नित्य योग करना चाहिए और जीवन में सबको सहयोग करना चाहिए। सहयोग एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम सब मिल करके एक दूसरे को सहयोग दे करके सुखमय संसार ला सकते हैं। ऐसी कुछ भावनाओं को लेता हुआ ये बहुत ही सुंदर गीत आपके सामने।
दाई मधुर गीत के लिए आपका विशेष धन्यवाद। अब हम आपको ले चलते हैं भावनाओं के प्रदेश, अति प्राचीन धार्मिक भूमि जिसका अर्थ है अयोध्या, अर्थात जहां कभी युद्ध नहीं होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। ये नाम बड़ी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक है। आइए अब हम अयोध्या पावन भूमि से एक महान व्यक्तित्व से जुड़ रहे हैं। श्री रसिक धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु महंत श्री जन्मजय शरण जी महाराज, आप इंडियन साधु सोसाइटी अयोध्या के नेशनल मिनिस्टर हैं। इनका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से इतना स्नेह है कि अनेक साधु संत महात्माओं महामंडलेश्वर धर्मात्माओं को यहाँ की यात्रा कराते हैं। अब हम आपके शुभ मनन और मंथन सुनते हैं।
ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी संस्थान कोई मानव नहीं चला रहा है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं चला रहा है, ये संस्था को ईश्वरीय प्रेरणा से ईश्वरीय शक्ति से जो संबल प्राप्त है या हो रहा है उसी से संस्था संचालित हो रही है कि पूरे विश्व के हर कस्बे में हर तहसील में हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी शाखाएं छोटी बड़ी के रूप में हैं और वहां पर एक ही सूत्र जो मुख्यालय से विगुल बजती है, जो दिशा निर्देशन होता है, वहां का जो नियमावली का प्रतिपादन होता है वो पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में उसको एक समय पर ठीक समय पर संचालन किया जाता है। ये अपने आप में ईश्वरीय शक्ति से प्रदत्त है, इसलिए इसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए जितना भी कहा जाए वो वाणी का विषय नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो चिंतन का विषय होता है, जो अनुभव का विषय होता है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे सत्ता, वो ईश्वर और ईश्वरीय सत्ता का केवल अनुभव किया जा सकता है और जो अनुभव कर रहे हैं मुझे विश्वास है मैं बहुत ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए भाई बहनों को भी बहुत बहुत मंगल शुभकामना देता हूँ कि ऐसी शैली में पूरे वर्ल्ड एक दिन ईश्वरमय हो जाएगा और सभी ईश्वर से जुड़कर अपने जीवन को आह्लादित कर देंगे। जैसे महाप्रलय काल में भी शास्त्रों में पुराणों में जो कहा गया है सारी नदियां और सारे पर्वत और वन और मकान और दुकान जन जन सब जलमग्न होकर के सब जो है एक स्थायित्व जगह ले लेते हैं, उसी प्रकार से सब ईश्वर में ही विलय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ईश्वर के स्वरूप में ही सभी विलय हो जाते हैं। उसी प्रकार से वही प्रयास चल रहा है कि सारे विश्व ईश्वर उन्मुख हो जाए, ईश्वर में विलय कर जाए, ईश्वरीय शक्ति के साथ में चूंकि संबद्ध है ये, इसलिए कोई खतरा नहीं है और सब शालीनता के साथ सज्जनता के साथ जो परिभाषा जितनी भी कही जाए उतना कम है। निर्मल मन जंतु मई पावा मोहि कपट जल चित्र भावा। जय
परम आदरणीय स्वामी जी का बहुत बहुत अंतर्मन से धन्यवाद। अब हमें शक्तिशाली प्रेरणाओं से भरपूर करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद सारस्वती जी। आप महामंडलेश्वर हैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के, ऋषिकुल धाम के पिटेश्वर हैं, भारतीय युवा साधु संगठन के अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सलाहकार एवं विरक्त सन्यासी परिषद के उपाध्यक्ष हैं। अब आप अपने महान विचारों से आज के इस ई कॉन्फ्रेंस में प्रकाश भरेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती ऋषिकुल धाम सेवा संस्थान ट्रस्ट जोखी, आज कोरोना की महामारी से भारत ही नहीं पूरा विश्व त्रस्त हो रहा है, जिसका अभी तक कोई निदान दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा विश्व लगा हुआ है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी मेडिकल संस्थाएं बनाने के लिए वैक्सीन में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही। जिस तरह से संसार का वातावरण है, जिस तरह से भारत का वातावरण है इस कोरोना काल में, उसमें एक चीज तो बड़ी अच्छी देखने को मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कल्पना तो करिए, यदि इस कोरोना से 50 गुना कोरोना फैल जाता, 50 गुनी पावर लेके कोरोना आता, विश्व की क्या स्थिति होती, समाज की क्या स्थिति होती, लोगों की क्या स्थिति बनती। आज तो केवल कुछ लाख लोगों की डेथ हुई है, हो सकता है उस समय 4-6-10 करोड़ लोग चले जाते। कभी ऐसा कोई वायरस आ जाए, इतना पावरफुल वायरस आ जाए, सारे के सारे सैटेलाइट, सारे के सारे मोबाइल टेक्नोलॉजी, सारी की सारी जितने हमारे मिसाइलें हैं उन सब की टेक्नोलॉजी, जितने हमारे टीवी सेट चल रहे हैं इन सब की टेक्नोलॉजी, यदि उस वायरस से ग्रसित होके ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी बंद हो जाए, विश्व का क्या होगा, हमारा क्या होगा, कैसे हम जिएंगे, कैसे करेंगे, विश्व की सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी, मोबाइल के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना, सैटेलाइट के बिना, उस समय विश्व कहां से कहां पहुंचेगा। फिर हमको प्रकृति पर ही आना पड़ेगा, फिर हमको भगवान के ऊपर आना पड़ेगा, फिर हमको आध्यात्मिकता के ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए हमारे विद्यालयों में, हमारे केंद्रों में, हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी महर्षियों ने उन चीजों को अपने अंदर जाकर के, अपने ध्यान में जाकर के उनको देखा, समझा और जाना, फिर अध्यात्म में ढल करके पूरे विश्व को शांति का संदेश देती। क्योंकि जिनको हम आज वैज्ञानिक कहते हैं उन्हीं को तो पहले हम ऋषि कहते थे, ऋषयो मंत्र दृष्टा। हमको जो ध्यान की विधि बताई जाती है, हमको जो मंत्रों के द्वारा शक्ति प्राप्त करने का तरीका बताया जाता है, ये उन हमारे लिए सर्वोत्तम है। इसी से हमारे जीवन में सुख और शांति रहेगी, इसी से हमारे जीवन को पावर मिलेगी, इसी से हमारे जीवन को शांति मिलेगी। और यदि हमारे ऋषि मुनियों संतों की बातों को हम नहीं मानेंगे, हमारे बाबाओं की बात को नहीं मानेंगे, हमारे तपोनिष्ठ जितनी ब्रह्मा कुमारी बहने हैं उन सब की बात को नहीं मानेंगे, या हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं, चाहे भगवान शंकराचार्य जी हुए हों, चाहे रामानुजाचार्य जी हुए हों, चाहे रामानंदाचार्य जी हुए हों, चाहे निम्बार्काचार्य जी हुए, उन सब की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके हम अपने जीवन को विश्व में एक आदर्श बना सकते हैं, एक आदर्श मानक स्थापित करके, अध्यात्म की अलग जगा करके विश्व को शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए आज जितनी आवश्यकता अन्न की है, विज्ञान की है, उससे ज्यादा कहीं आवश्यकता हमारे अध्यात्म की है। विश्व को शांति केवल अध्यात्म दे सकता है, विज्ञान नहीं। विज्ञान बिल्डिंग दे सकता है, भौतिक तरक्की दे सकता है, भौतिक अशांति दे सकता है, लेकिन शांति नहीं दे सकता। शांति केवल और केवल अध्यात्म से मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज नहीं तो कल हमें इस अध्यात्म के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। इसलिए कई बार हमारे गुरुजी कहा करते हैं, हम घरों में जाते हैं भक्तों के यहाँ तो देखते हैं टीवी सेट लगा है, सोफा सेट लगा है, किचन में जाएं तो टेप कप सेट लगा है, प्लेट सेट लगा है, चम्मच सेट लगा है, नीचे जाएं तो बच्चों के लिए किताबों के सेट लगे हैं, कपड़ों के सेट लगे हैं, माताओं के लिए ज्वेलरी के सेट लगे हैं, हर चीज सेट है, हर कमरा सेट है, हर मकान सेट है, हर व्यक्ति सेट है, लेकिन सब सेट होने के बाद व्यक्ति स्वयं में अपसेट है। क्यों? सब चीज की प्राप्ति है, मन माफिक है, तो फिर आपको अशांति क्यों, आप अपसेट क्यों? भौतिकता आपको शांति नहीं दे सकती, सेट कर सकती है, पदार्थों को सेट कर सकती है, लेकिन शांति नहीं दे सकती। शांति अध्यात्म के द्वारा मिलेगी, शांति परमार्थ पथ पर मिलेगी, शांति ध्यान से मिलेगी, शांति महापुरुषों के द्वारा मिलेगी। इसलिए आज हम सबको महापुरुषों के द्वारा शांति पर मार्ग प्रशस्त करके हमें चलना पड़ेगा और वही शांति हमारे जीवन में आगे चल के काम आएगी। इसलिए आज हमारे महापुरुष, हमारी बहनें, हमारी दादियां और हमारे केंद्र, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि सब मिलकर के जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं विश्व के लिए अद्वितीय उदाहरण होगा। अभी तक हाथ जोड़ने की परंपरा को पाखंड मानते थे लेकिन आज पूरा विश्व हमको आदर्श मान के उनको अपने जीवन में स्थापित कर रहा है। ये हमारे अध्यात्म की देन है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। इसलिए आज हम उनसे सबक लेते हुए, उन चीजों को जानते हुए, उन चीजों को अपने जीवन में तो उतार ही रहे हैं, साथ साथ विश्व के सभी लोगों के जीवन में उतारें। और भौतिकता अपनी जगह है लेकिन अपने जीवन को कम से कम 50% समय या 50% जीवन हम प्रकृति को साथ लेकर के चलें तो हमारे जीवन को आज भी शांति की प्राप्ति होती रहेगी। इतना बड़ा कोरोना फैला है, इतनी बड़ी महामारी फैली है, फिर भी कभी गांव में जाकर के देखिए आज कोरोना नहीं है। आज गांव में जाकर के देखिए वहां पर शांति ही शांति है, लोग जी रहे हैं, ताजी खाना घर का भोजन कर रहे हैं, बाहर का नहीं कर रहे हैं, होटलों का नहीं कर रहे हैं, रेस्टोरेंटों का नहीं कर रहे हैं, ढाबों का नहीं कर रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये स्वच्छ जीवन जीना है तो स्वच्छ भोजन जरूरी है और स्वच्छ भोजन अपने परिवार का, अपने हाथ का बनाया हुआ ही होता है। बाहर का खाएंगे कहां से कोरोना लगेगा, कहां से वायरस लगेगा, कहां से जीवाणु लगेंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और हम उन कीटाणुओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, वायरस के द्वारा ग्रसित होते चले जाएंगे। वो तो चलो अच्छा है कि अभी ये वायरस कम स्तर पर है, कमजोरी के स्तर पर है, यदि यही 50 गुना 40 गुना 30 गुना बड़ा होता तो आज हम कहां होते, देश की परिस्थिति क्या होती, विश्व की परिस्थिति क्या होती और आज विज्ञान उसमें कहां तक सहयोग कर पाता। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं विश्व में, इटली में जाइए, अमेरिका में जाइए, वहां बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन कोरोना के बाद मरीजों की स्थिति क्या है कि वहां सबसे ज्यादा है। भारतवर्ष में मेडिकल फैसिलिटी सबसे कम है विश्व में, लेकिन आध्यात्मिक फैसिलिटीज विश्व में सबसे ज्यादा है तो केवल भारतवर्ष में है। और आज देख लीजिए भारतवर्ष में आध्यात्मिक फैसिलिटीज होने के बाद भी आज कोरोना सबसे कम है, क्योंकि लोग अध्यात्म पर चलते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, अध्यात्म को स्वीकार करते हैं और अध्यात्म के द्वारा अपने जीवन को सुख और शांति में बनाते हैं। और इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम भौतिकता को साथ लेकर के चलें, अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिकता को साथ लेकर के चलना उससे भी ज्यादा जरूरी बात है। तभी हम अपने जीवन को, अपने भारतवर्ष को, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को जीवित रख पाएंगे और विश्व के सामने विश्व गुरु बनकर के, सोने की चिड़िया बनकर के एक नया संदेश दे पाएंगे। क्योंकि आज समय है हम विश्व का एक नया आदर्श उपस्थित करें, भारत कहां था, कहां है और आपके लिए भारत क्या कर सकता है। आज पूरे विश्व को दिशा देने वाला भारत है, पूरे विश्व को गौरवान्वित करने वाला भारत है, पूरे विश्व को नई दिशा दे करके उस अध्यात्म पथ को प्रचारित प्रसारित करके उन पर चल के सभी के जीवन को सुख और शांति में बनाने का कार्य प्रशस्त करने वाला केवल भारत है। और हमें ऐसे भारत पर गर्व है, भारत की संस्कृति गर्व है, भारत के महापुरुषों, संतों, ऋषि मुनियों, महर्षियों पर गर्व है और वही गर्व जो हमारी संस्कृति में है वो पूरे विश्व में फैले। इसलिए हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोरोना जल्दी खत्म हो, कोरोना के द्वारा लोगों को जो परेशानियां हुई हैं उनसे शांति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम और सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटरों को, विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि कोरोना काल में इन्होंने अपने तन मन धन से कोरोना की चिंता न करते हुए विश्व की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, उसके लिए हम सभी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार सभी दीदियों को, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।
आदरणीय महामंडलेश्वर जी का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। हमें बेहद खुशी है कि अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर ऑफ पीस से सम्मानित एच श्री स्वामी आध्यात्मनंदा जी महाराज। आप एच श्री स्वामी चिदानंदा जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने 46 वर्षों से संन्यास को जीवन में धारण किया है। आप शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के अध्यक्ष और गुजरात दिव्य जीवन संघ अहमदाबाद के अध्यक्ष भी रहे हैं। स्वामी जी रक्तदान के मोर्चे पर एक महान मिशनरी हैं और आपका स्लोगन है रक्तदान करें और जीवन बचाएं। आपको गुजरात के राज्यपाल द्वारा सेंचुरियन ब्लड डोनर के रूप में सम्मानित किया गया है। स्वामी जी ने इस अर्थ प्लैनेट पर 10 मिलियन से अधिक पौधे लगाए हैं और प्राकृतिक संतुलन के लिए धरती माता की महान सेवा की है। आप न्यू मेक्सिको में विश्व शांति सम्मेलन के लिए भारत के प्रतिनिधित्व रहे। आपको इंडिया कनाडा कल्चरल एंड हेरिटेज एसोसिएशन द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा आयोजित चाइना में पहला शाकाहारी सम्मेलन बहुत ही सफल रहा। आपसे आग्रह है कि अपने चिंतन की धारा हमारे समक्ष रखें।
ओम शांति। बड़ी ही प्रसन्नता है हमारे विश्व फलक पर प्रसारित ये ब्रह्मा कुमारी परिवार कुछ चिंतन के लिए एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। हमारे ब्रह्मलीन परम भागवतीय पुण्य श्लोक प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप शिव बाबा जी ने हमें क्या मंत्र दिया? ओम शांति। तो ये तो पूरा वैदिक परंपरा का मंत्र है। हाँ, वैसे क्या कहते हैं? कहते हैं झऊ शांति ही, अंतरिक्ष गुम शांति ही, आप शांति ही, औषधय शांति ही, वनस्पतय शांति ही, कि पृथ्वी में जल में वायु में आकाश में अग्नि में सर्वत्र शांति शांति शांति। तो ये शांति कैसे होगी? आज का हमारा विचार क्या है कि हमारी जो पर्यावरण में अशुद्धता हो रही है तो उसमें हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? अरे पिछले 3-3.5 महीना में हमने जो किया यही जिम्मेदारी है। यमुना जल को शुद्ध करने के लिए कितने गवर्नमेंट ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा दिए, दिल्ली में, आगरा में और हमारे वृंदावन मथुरा में तो यमुना जी को छू नहीं सकते ना। और कभी किसी ने हमको ये बताया कि वो वृंदावन में मथुरा में यमुना जल का पान करते वो दिल्ली का मलमूत्र होता है? हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास के ऊपर कितना बड़ा एक घात लगा हुआ है। वजह क्यों है? क्योंकि ये हम ही गंदगी करते हैं। अभी 3-3.5 महीने से लोगों ने बाराना बंद कर दिया और सोशल डिस्टेंस कर दिया। अरे हमारे ऋषिकेश के गंगा जल को हमने देखा कांच के जैसे स्वच्छ और साफ और सुंदर, आकाश बड़े सुंदर साफ हो गए, चिड़ियाएं घूम रही थी, आश्चर्य था, मोर है वो सड़क के बीच में घूम रहा है और कार के ऊपर बैठा हुआ है, भालू तक भी, अरे हमारे हरिद्वार में BHEL में तेंदुआ है वो कॉलोनी में घूमने आ गया। ये पशु, ये पंखी, ये हमारे जंतु जानवर, ये हाथी इत्यादि, ये तमाम लोगों ने अनुभव किया कि अब हम निर्भय हैं। क्यों है निर्भय? क्योंकि मनुष्य जाति ने वहां छेड़छाड़ करना बंद कर दिया। कभी एक समय ऐसा हुआ कि आक्रोश में आकर के किसी एक देश के पूरा स्टीमर भर के उन्होंने जो तेल था वो समुद्र में डाल दिया। शांति शांति शांति। वो समुद्र के किनारे हजारों मछलियां मगरमच्छ मरे हुए पड़े थे। हमें कोई अधिकार नहीं है। आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमको आशीर्वाद नहीं करेंगी, हमें कोशेंगी। हमारे बुजुर्गों ने जो हमको देखिए कितने सारे पेड़ यहाँ लगे हुए हैं यहाँ पर, हाँ ये वृक्ष का, ये हमें वन पुंज का, हमें नदियों का, पहाड़ों का संरक्षण करना ही पड़ेगा। वृक्ष है तो वर्षा है, वर्षा है तो खेती है, खेती है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। तो हमारे अपने जीवन के लिए हमको इस पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। देखिए बहुत दुख की बात है, पहले यात्रा में लोग पैदल जाते थे, बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, छोटी एक वीथी होती थी, गुजराती में पगडंडी कहते हैं, तो उसमें होते थे। मगर अभी रास्ता बना दिया, अभी सिंगल रास्ता पर्याप्त नहीं है, बड़ा रास्ता भी चाहिए, एक जाने का एक आने का। तो रास्ता बनाने के लिए पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा, पहाड़ को जब तोड़ना पड़ेगा तो क्या होता है, उसको ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने से जितना पहाड़ को तोड़ना है उतना तो टूटेगा, इसके अतिरिक्त पहाड़ खोखला। देखिए क्या हुआ, ये हमारे गंगोत्री जो है, जहां से गंगा जी का प्रागट्य हुआ, कब हुआ था, भगवान राम के पहले, क्योंकि राम भी तो गंगा पार गए थे, मान लीजिए 10,000 वर्ष से अधिक समय से हुआ था। अभी वो गंगोत्री का जो उद्गम है वो पूरे 18 किलोमीटर दूर गौमुख में है। क्यों, इतने साल में हमने हिमालय 18 किलोमीटर काट दिया। अगर यही गति चलती थी, पहले तो लोगों को सुविधा ही नहीं थी, अरे हमारे अमरनाथ जी की गुफा में अमरनाथ जी का दर्शन, वो शिव बाबा भोलेनाथ का दर्शन श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन होता था, छड़ी अभी 1 महीने पहले कर दिया। फिर भी वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले लोगों की गर्मी से 15 दिन में वो शिव गलित हो जाता है। हमारा कर्तव्य है, हिमालय के वृक्ष आदि को हमने काट दिए। वो काटने से क्या हुआ, वर्षा जो आती थी उसको वृक्ष अपने मस्तक पर धारण करते थे, पानी धीरे 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 गिरता था। वो जो पानी जमीन में स्पर्श होता था, तो जमीन में क्या था कि जमीन पर ये इतना तो पत्ते होते थे सूखे, उसके ऊपर गिरता था, और सूखे पत्तों पर गिरेगा तो धीरे 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 उसमें छन करके, जैसे माँ अपने बच्चे को स्पर्श करती है, इसी तरह से वो पानी जमीन को स्पर्श करता था। वृक्ष काट दिए, जोर से वर्षा गिरती है, जो पत्थर पांव में छोटा सा टकरा था ना, वो ही पत्थर अब छाती तक आ गया, इतनी जमीन हमने काट दी। गंगा जी में पहले खाद ऊर्जा आती थी वृक्षों की, पत्तों की, औषधियों की, वो जल है, वो अंग्रेजी लोग हैं, वो यहाँ से जब लंदन से कलकत्ता आते थे 2 दफे रुक के आते थे, कलकत्ता से लंदन जाते थे, कहीं रुकते नहीं थे, क्यों, पर्याप्त जल गंगा जी के लेके जाते थे। अभी तो हरिद्वार ऋषिकेश में भी जल पीने लायक, हम जिम्मेदार हैं। क्यों ये हमारी केदारनाथ की घटना हुई, इतना बड़ा लैंड स्लाइडिंग क्यों होता है, अरे वो ब्लास्ट करने के समय में निकटवर्ती जो गांव है उनके लोग बहरे हो गए, हम क्या बताएं, हम बहुत बेजिम्मेदार लोग हैं, हम अपनी ही सोचते हैं, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। वृक्षों की रक्षा करें, पहाड़ों की रक्षा करें, नदियों की रक्षा करें, अपने आंगन में कुछ पेड़ जरूर लगाएं, बोरसलिका लगाएं, 350 वर्ष का आयुष्य है, उसके दातुन से दांत अच्छे रहते हैं, उसके फूल से इत्र बनता है, उसका फल चिड़िया बहुत पसंद करती है, कुछ नहीं तो सजना ड्रमस्टिक लगा लो, कुछ नहीं तो 10-20 तुलसी जी लगा लो, अपने आंगन में वृक्षारोपण करो, और जहां जहां सुविधा हो कृपया वृक्षों को काटे नहीं, पहाड़ों को नष्ट ना करें, सीमेंट के लिए पहाड़ों को, मसूरी कितनी सुंदर होती थी, पहाड़ों की रानी कहते थे, अब सीमेंट फैक्ट्री वालों ने उसको एक सुंदर स्त्री को नकोच दे, ऐसा खरुच मार दे, ऐसी मसूरी की अवस्था में हम जागृत हों। हमारी जो आवश्यक, ये प्रथम आवश्यकता जो है वो यही है कि हम पर्यावरण का रक्षण करें। अगर कम से कम नए पौध ना लगाए तो बिगाड़े तो नहीं, आपका सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, मैं क्या कहूंगा, यही कहूंगा, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र मंगल हो, सबका शुभ हो। भूमि मंगलम, उदक मंगलम, गगन मंगलम, सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम, वायु मंगलम, भूमि मंगलम, जीव मंगलम, जगत मंगलम, मनोमंगलम, आत्ममंगलम, सर्व मंगलम, सर्व मंगलम, सर्व मंगलम, भवतु भवतु भवतु, सर्व मंगलम, भवतु भवतु भवतु। ओम शांति।
आदरणीय स्वामी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। वैश्विक उत्थान के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान, यही है आज के वक्त की मांग। अब हमें राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति कराने हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई थाने में स्थित राजयोग सेंटर के संचालिका बीके सरला बहन। आप 3 दशकों से ईश्वरीय सेवाएं कर रही हैं। आपसे अनुरोध है कि राजयोग मेडिटेशन से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार करें।
ओम शांति। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा वैश्विक उत्थान, यह संगोष्ठी चल रही है। मानव जीवन ये परमात्मा के द्वारा मिला हुआ अनमोल उपहार है। इस अनमोल उपहार को श्रेष्ठ बनाना हो, सकारात्मक बनाना हो, शक्तिशाली बनाना हो, तो आवश्यकता है आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता ये प्रभु का वरदान है। आध्यात्मिकता के द्वारा ही हमें सर्वगुण शक्तियां संस्कारों रूपी धन मिलता है, और ये कैसा धन है जो आत्मा अपने साथ अगले जन्म तक भी ले जाती है। और ये आध्यात्मिकता हमें राजयोग भी सिखाती है। राजयोग अर्थात मिलन, योग अर्थात संबंध। यहाँ हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा के साथ मिलन है। इस मिलन को करने के लिए मन ये सक्रिय भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि मन ऐसी क्षमता रखता है जो 1 सेकंड में 10 साल पहले के काल में चक्र लगाकर आ जाता है, सैकड़ों मील की दूरी पर सेकंड में पहुंच जाता है। और इसी मन के द्वारा हम भी उस परम शक्ति परमात्मा के पास पहुंचकर और उनकी शक्तियों का अनुभव करेंगे। तो चलेंगे सुंदर विचारों के साथ उस परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने, अथवा अपने अंतर की यात्रा, भीतर जगत की यात्रा करने के लिए। आज जो मनुष्य भीतर में अपने आप को खाली महसूस करता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है, तो भीतर की यात्रा कर स्वयं को सशक्त बनाएंगे। तो हम चले सुंदर विचारों से हम अपने आप को भरपूर करें। इस यात्रा के लिए अथवा इस आध्यात्मिकता के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। 1 है साधक, 2 है साध्य, 3 है साधन। तो साधक अर्थात मैं आत्मा, साध्य अर्थात परमात्मा, और साधन माना मेरा मन। तो इस मन रूपी साधन के द्वारा हम उस साध्य के पास पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप स्वस्थ होकर बैठे बाह्य जगत के सर्व बातों से अपने मन को समेट कर अपना ध्यान मस्तक में भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करें। मैं आत्मा इस मस्तक में विराजमान हूँ। शांति स्वरूप कहो, शांति का पुंज कहो, ज्योति का पुंज मैं हूँ, आत्मा हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। चले अपनी वास्तविकता की ओर। मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा स्वगुण शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शक्तिशाली हूँ। धीरे धीरे अपने मन को शक्तियों के परम स्रोत परम पिता परमात्मा की ओर ले चलते हैं। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा जो स्वयं शक्तियों के स्रोत है, सर्व गुणों के सागर है, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, ज्योति का पुंज है, दिव्य प्रकाशमान अनंत प्रकाशमान है, तेजोमय है महसूस करें, उस तेजोमय शक्तिशाली परमात्मा से शक्तियां निकलकर मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। महसूस करें वो शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मेरी हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होकर और अब वो शक्ति चारों ओर बिखर रही है। एक सुंदर आभामंडल मेरे चारों ओर बन चुका है और इस सुंदर आभामंडल का प्रभाव वातावरण पर, वायुमंडल पर पड़ रहा है। परमात्मा से आती हुई शक्तियां मेरे भीतर में समा रही है, मेरे हर कर्मेंद्री को शीतल, शांत, शक्तिशाली बना रही है। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा, मेरे संबंध में आने वाली हर आत्मा इस शक्ति का अनुभव कर रही है। मेरे द्वारा निकलती हुई ये ऊर्जा दूर दूर तक सारे विश्व में फैल रही है। वातावरण पावरफुल, सशक्त बन रहा है। मैं आज अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि राजयोग की शक्ति को अपनाकर अपने आप को प्रतिदिन भरपूर कर, शक्तिशाली बनाकर अनेक आत्माओं तक ये शांति की शक्ति के प्रकंपन फैलाती रहूंगी। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत आभार सरला बहन का। राजयोग की साधना और दिव्य अनुभूतियां कराने के लिए आप सभी का आज के उद्घाटन सत्र में शामिल होने के लिए विशेष धन्यवाद। हम आप सभी से फिर मिलेंगे आज शाम 6 बजे इस ई कॉन्फ्रेंस के ओपन सेशन 1 में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे पुनः मुलाकात होगी। ओम शांति।